प्रस्तुत है कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है। इस कार्यक्रम में हम आपको फिल्म जगत के कुछ प्रतिष्ठित और कुछ उभरते हुए कलाकारों से मुलाकात करवाते हैं।
नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं यानी आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी। दोस्तों, यूं तो एक मुलाकात जरूरी है कार्यक्रम में फिल्म या संगीत जगत से जुड़े फनकारों से हम आपको रूबरू कराते हैं, पर आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक कवि, एंकर और लेखक जो प्रत्यक्ष रूप से फिल्मों से नहीं जुड़े हैं, पर हाल ही के दिनों में इन्होंने कुछ ऐसा कमाल का काम किया है जिससे इनका संबंध हमारी फिल्म संगीत जगत की सबसे बड़ी शख्सियत के साथ जुड़ गया है। सौर सम्राज्ञी, सुरों की देवी, साक्षात माँ सरस्वती का रूप है जो हम सब संगीत प्रेमियों के लिए, जी हाँ, उन्हीं लता मंगेशकर के साथ बिताए हुए ढेरों पलों को, आपसी संवादों को कलमबद्ध कर एक पुस्तक का रूप दिया है हमारे आज के मेहमान यतेंद्र मिश्र ने। यतेंद्र मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और आज लता सुर गाथा नाम की इस बड़ी पुस्तक के लेखक के रूप में इन्हें अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाकर मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। चलिए मिलते हैं यतेंद्र से और जानते हैं कि लता सुर गाथा नाम की इस महान किताब के लिखे जाने की दिलचस्प कहानी। यतेंद्र, आपका रेडियो प्लेबैक इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है।
बहुत धन्यवाद श्रोताओं का कि मुझे एक मुलाकात जरूरी है मैं बुलाया।
यतेंद्र भाई, आपकी इस पुस्तक को मैं किसी साधारण पुस्तक की श्रेणी में तो बिल्कुल नहीं रख सकता हूँ। ये एक अभूतपूर्व किताब है और एक अद्वितीय किताब है जो हर संगीत प्रेमी के कलेक्शन में होनी ही चाहिए। लता मंगेशकर जैसे महान गायिका को और जिनका संगीत सफर इतना लंबा और विस्तृत रहा है, उनको एक किताब में समेट पाना मतलब किसी मामूली लेखक के तो बस की बात नहीं थी। आपने इतनी मेहनत के साथ इस काम को किया है, इसके लिए आप बहुत 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 बधाई के पात्र हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कमाल की किताब आपने लिखी है, इस आइडिया का, इस कॉन्सेप्ट का जो बीज है वो कब और कैसे पड़ा आपके जहन में?
सबसे पहले तो सजीव भाई आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इतने प्यार से इस पुस्तक का एहतराम किया है। इस आइडिया के पहले मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि इस किताब को लेकर के जो मेरे मन में एक धारणा थी, उसके बहुत पहले से मैंने संगीत कलाकारों पर काम किया है। नृत्यांगना सोनल मानसिंह जी पर एक इसी तरह की एक पुस्तक देवप्रिया लिखी थी सन 2007 में, और उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब पर काम किया। और सबसे पहले जब मैं कुल 20 वर्ष का रहा होऊंगा तो मैंने गिरिजा देवी जी पर एक किताब लिखी थी। मुझे हमेशा से ये लगता रहा कि भारतीय कलाकारों पर, सिनेमा के लोगों पर, पार्श्व गायकों पर और जितने भी महान और उत्कृष्ट कलाकार हैं भारत में जो हुए हैं, उन सब को लेकर के कुछ ऐसा दस्तावेज बनाना चाहिए जो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत उपयोगी हो और कम से कम उनके शोध और अध्ययन की बात बने। एक तरीके से लता सुर गाथा में मैंने उसी शोध को अंजाम देने की कोशिश की है कि कैसे बहुत सारे आयामों में हम एक पार्श्व गायिका को महान बनने के उस स्तर पर देख सकते हैं जिनको सुनते हुए तीन पीढ़ियां जवान हुई। मतलब मैं उनका प्रशंसक हूँ, मेरे पिताजी प्रशंसक रहे हैं और मेरे से पहले की पीढ़ी में भी, मेरे दादाजी की पीढ़ी में भी वो लता जी के गाने आते थे, अर्ली 50s का मामला था। तो कोई भी कलाकार, या चाहे वो सजीव सारथी जी हों, चाहे वो यतेंद्र मिश्र हों, या कोई भी व्यक्ति जो संगीत का रसिक है या आस्वादक है, वो ये कहे कि वो बहुत महान गायिका है तो आप कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे, क्योंकि उनसे पहले, आपसे पहले बहुत सारे मशहूर महान लोगों ने, चाहे वो यहूदी मैनहीन हों, चाहे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब हों, पंडित जसराज हों या पंडित कुमार गंधर्व, सभी ने उनकी तारीफ कर रखी है, उनकी कला को अविस्मरणीय माना हुआ है, शिखर पर माना हुआ है। तो बात इस बात की समझ में आती है, ये दिमाग में एक विचार आता है कि वो जो यात्रा है संगीत की, उसमें एक रसिक के तौर पर आप वे कौन से क्षण, कौन से बिंदु ढूंढना चाहते हैं जिनसे संगीत की एक बड़ी शताब्दी निर्मित हुई है। पिछला पूरा जो एक 20वीं शताब्दी का मामला बनता है हिंदी फिल्म संगीत के अध्याय के संदर्भ में, उसमें लगभग आधी शताब्दी से अधिक पर लता जी की आवाज़ मौजूद रही है, और उसको ध्यान से सुनना या उसमें से इस बात की निशानदेही कर पाने का जतन भर करना कि हम कुछ सुंदर और सार्थक तलाश सकें और नई आने वाली संगीत में रमने वाली पीढ़ियों को सौंप सकें, ये एक बड़ी चुनौती थी। मुझे लगता है कि अगर मैं उसका एक अंश भी कर पाया हूँ तो अपने मेहनत को सार्थक समझता हूँ।
जी यतीन्द्र, ये बात बिल्कुल सही है। हम लोग तो खैर कुछ उनके तारीफ में कहने लायक है ही नहीं कहीं से, मगर फिर भी ये जो सोच आपने रखी कि किस तरह से एक पुस्तक में कलमबद्ध कर आप इस तरह से उनके जो संस्मरण है उनके गीतों में उनकी आवाज को आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए एक वाकई निशानदेही आप दे के जा रहे हैं, ये आप जो सोच आपने डेवलप करी ये वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने ये सोचा और उसके बाद क्या आपने डायरेक्ट लता जी से इस बारे में बात की या किसी के थ्रू आप उन तक पहुंचे, कैसे आपने उनको कन्वे किया?
जी, आपका शुक्रिया सजीव भाई कि आप इस तरह से लता जी की इस गाथा के बारे में दिलचस्पी से जानना चाह रहे हैं। जो मेरी धारणा है बड़े कलाकारों को लेकर के और अपने समय के मूर्धन्य लोगों के बारे में बात करने की, मुझे हमेशा से लगता रहा कि रुक्मणी देवी अरुंडेल, बाला सरस्वती, पंडित रविशंकर, अल्लादिया खां साहब, उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब जैसे लोग, या बाद में मकबूल फिदा हुसैन और तमाम सारे महत्वपूर्ण लोगों के बारे में, उनकी कला के बारे में बातें कम कही गई हैं। ज़्यादातर उनकी लोकप्रिय छवि को बुनाया जाता है या उन्होंने कोई बात कह दी है तो वो सारा मैगजीन्स में हाईलाइट बनता है, या कभी वो पुरस्कृत होते हैं तो उनको लेकर के बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। लेकिन उनकी जो अपनी कला है, जो उनकी अपनी उपज है, संगीत में जिसे उपज कहते हैं, या जो एक नवाचार है, एक इनोवेशन का पॉइंट है कि कैसे आप किसी कलाकार के मानस को पढ़ सकते हैं कि इनके मन में क्या बात चली होगी जब किसी गीत में ये सुर लगा या जब किसी पेंटिंग में ये मास्टर स्ट्रोक आया। मुझे ये बात शुरू से बहुत कौतूहल में डालती है कि कैसे लता जी के गीत या लता जी की जो पूरी भनक है उनके गीतों में और पूरी तरह से निकल के आती है, वो उनका अपना एक निजी हस्ताक्षर बन जाती है। शुरू से लेकर आज तक हुसलाल भगतराम के दौर से लेकर के बाद में एसडी बर्मन और बिल्कुल नए लोगों में रहमान तक अगर हम ये बात करें, तो ये बात आसानी से लक्ष्य की जा सकती है कि हर एक म्यूजिक डायरेक्टर के लिए लता जी ने अपना एक विशिष्ट मुहावरा विकसित किया। और वो चीज़ जिसे हम अगर लता जी के मार्फत हटा के दूसरे उदाहरणों से कहना चाहें, तो जैसे जयपुर घराने का मामला है, जयपुर अतरौली में जिस समय गायन होता है तो रागदारी के पूरे दर्शन करा दिए जाते हैं। शुरू में ही रागदारी इस ढंग से सुंदर ढंग से दिखाई जाती है कि आपको ये बात समझ में आती है कि कोमल ऋषभ आसावरी है या ये भीम पलासी है या ये मालकौंस है। आप केसरबाई केरकर जी का गायन सुने तो ये बात समझ में आती है कि किस तरह से उन्होंने 3-3 मिनट की रिकॉर्डिंग्स में राग की पूरी दर्शना कराई है। ये बात फिल्म संगीत में सबसे ज़्यादा सटीक ढंग से आदरणीय लता जी के बारे में बैठती है। और जब वे गाती हैं या जब वो किसी भी राग को फिल्मी गीतों के रूप में हस्तांतरित कर रही होती हैं, तो उसका पूरा मेयार एक बड़े चित्र विचित्र उपस्थिति में एक बहुत सुंदर ढंग से खुलता है। मुझे वो बात हमेशा से हॉन्ट करती थी, इसलिए मुझे लगा कि कुछ रसिक भाव से, कुछ उस भाव से जिसे कहते हैं कि सीखने के भाव से, और कुछ एक आम श्रोता के रूप में कुछ बात कहनी चाहिए, जो इस किताब की पृष्ठभूमि रही है। और लता जी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, मेरे परिवार को मिलता रहा है, हम सौभाग्यशाली हैं। तो मुझे जब उनसे बात करने की ये इच्छा हुई और मैंने जानना चाहा, तो ये मैं इसे सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद मानूंगा और आप सबकी शुभकामना शुभेच्छा कि दीदी तैयार हुई और उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और जिसके फलस्वरूप ये पुस्तक आपके सामने है।
यकीनन यतीन्द्र भाई, अच्छा आपकी पुस्तक के कवर पर जो कुछ लिखा है मैं थोड़ा सा वो अपने श्रोताओं के लिए पढ़ता हूँ। ये पुस्तक भारत रत्न लता मंगेशकर और युवा संगीत व सिनेमा अध्येता यतीन्द्र मिश्र के बीच 6 वर्षों तक चले लंबे संवादों के अंशों पर आधारित है। लता जी के आत्मीय सहयोग से निर्मित उनके सुरों की ये गाथा उनके प्रशंसकों को समर्पित है, उनके जीवंत यात्रा का दस्तावेज जिसमें लता मंगेशकर की अद्भुत संगीत संसार उजागर हुआ है। ये आपके पुस्तक के कवर पर लिखा हुआ है और इसमें एक शब्द जो आता है वो है कि 6 वर्ष एक बहुत लंबा समय होता है। यतीन्द्र भाई, ये कैसे संभव हुआ? मैं बहुत हैरानी से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि 6 वर्षों तक आप क्या उनके संपर्क में रहे, क्या रोज़ बातचीत आप करते थे, कैसे आपने ये मैनेज किया, प्लीज़ थोड़ा सा बताइए।
ये बड़ा मजेदार प्रश्न है आपका, और मेरे अधिकांश मित्र इसी तरह के प्रश्न मुझसे करते रहे हैं जब से वो ये जानते हैं कि मैं इस किताब की प्रक्रिया में शामिल हूँ, या बहुतों को बाद में पता चला जब ये पुस्तक के रूप में सामने आई। सजीव भाई, इस पूरी किताब के बनने, मतलब मैं इसकी बात इस तरह से कहूँगा कि इसकी अवधारणा के विकसित होने से लेकर के और पाठकों के हाथ में जाने तक के बीच की जो अवधि है वो लगभग 6-7 वर्षों की रही है अमूमन। और इसमें मैं ये जरूर जोड़ना चाहूँगा कि लता जी जैसी महान पार्श्व गायिका के बारे में बात करनी थी, उनके बारे में कुछ लिखना था, और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लता जी के बारे में आप भारतवासियों को क्या नया बता देंगे जो उनको मालूम नहीं है, या कौन सी ऐसी बात, कौन से ऐसे नोट, कौन से ऐसे रिदम पिला के बात खत्म करेंगे जिससे लोगों का कौतूहल या लोगों की जिज्ञासा बनी रहे या बढ़ सके कि साहब अच्छा ये भी नया एक दृष्टिकोण है जो हम समझ सकते हैं या जो हमने शायद अभी इस ढंग से नहीं जाना था। तो ये बहुत सारी चुनौतियों, उहापोहों, अंतर्द्वंद्वों के बीच में किताब चलती रही। तो उस दौरान क्या होता था कि जैसे मेरी बात होती थी तो कई बार लगातार बात होती थी, और उस बात को समझने और उसे आत्मसात करने के लिए भी कुछ समय, कुछ अवकाश, कुछ पॉज चाहिए होता था। जैसे कि उन्होंने कभी म्यूजिक डायरेक्टर्स पे बात कर ली और लंबी बात चली, वो 10-15 दिन बात हुई, और फिर उसमें एक ब्रेक आया, फिर मैं उस पर कुछ सोचता था, मनन करता था, लिखता था उन पे संबंधित या फिल्म म्यूज़िक से संबंधित तमाम किताबें, शोध ग्रंथ, पेपर्स जो भी पब्लिश हुए उनको खंगालता था, म्यूज़िक डिक्शनरीज देखता था। पुस्तक में एक लंबी बिब्लियोग्राफी है जिन किताबों को मैंने आधार बनाया है और जिन चीज़ों को मैंने उसमें से प्रामाणिक माना है और उसमें दिया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बात होती थी जो कभी लंबी भी चलती थी, कभी कम समय की चलती थी, कभी घंटों होती थी, कभी 10 मिनट होके रह जाती थी। और सबसे उल्लेखनीय और मज़ेदार बात यह है कि किताब से संबंधित पक्षों से अलग भी कई बार नितांत घरेलू वातावरण में बातें होती थी, जैसे त्योहारों पर उनको उनसे आशीर्वाद लेना, उन्हें प्रणाम करना, या कोई बात पूछना, या उनका हालचाल लेना, अगर दीदी अस्वस्थ हैं, जुकाम है, बुखार है तो उनसे बात करना। लेकिन वो मुझे लगता है कि वो चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन बातचीत तो हर तरह की होती थी। और कई बार क्या होता था कि मैं जैसे सोचता था कि मुझे आज इस सब्जेक्ट पे बात करनी है या मुझे आज इस अभिनेत्री के बारे में पूछना है, लेकिन अगर आपने जैसे सवाल किया और बातचीत का सिरा कहीं और मुड़ गया तो वो संस्मरण में चली गई या वो कोई एक अच्छा दिलचस्प वाक्य सुनाने लगी, तो पता लगता था कि 2-3 दिन 4 दिन उसी संस्मरण या उसी वाक्य पे बात होती थी और प्रश्न वही मूल रूप में टिका रहता था। तो कई बार नई चीज़ें मिलती थी, जैसे आप जाते हैं कि आप हीरा ढूंढने गए हैं और आपको उसके मार्फत कुछ और मणियाँ मिल जाएं, आपको माणिक भी मिल गए, आपको मोतियाँ भी मिल गईं, तो आप हीरे की जुगत में माणिक और मोतियाँ नहीं छोड़ते, आप उन्हें भी अपनी झोली में डालना पसंद करते हैं और बाहर निकल आते हैं। और बाद में फिर आपको लगता है कि अरे उस यात्रा में तो मुझसे वो जवाहरात तो बहुत सुंदर कलेक्ट कर लिए मैंने, लेकिन जिस जवाहरात को, जिस मणि को ढूंढने निकला था वो अभी बची हुई है। तो फिर से आप एक नई यात्रा पर जाते हैं। मैं इसको अगर बहुत काव्यगत ढंग ना कहूं, बहुत पोइटिक ना बनूं, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि एक बड़े सांगीतिक विमर्श को क्रिएट करने के लिए, और लता जी के परिप्रेक्ष्य में, ये सिर्फ लता जी की बात नहीं है इस पुस्तक में, ये भारतीय फिल्म संगीत और खास करके हिंदी फिल्म संगीत के बनने, सवरने और उसके मिजाज विकसित होने का भी आकलन है। क्योंकि जो मैंने पुस्तक में लिखा है वो उस प्रक्रिया में सुरैया की भी चर्चा आती है, अमीर बाई कर्नाटकी की चर्चा भी आती है, राजकुमारी जी की आती है, शमशाद बेगम की आती है, और लता जी के बहाने तमाम सारी वे बातें भी आती हैं जो शायद संगीत के अध्येता कभी पूछने ना जाते उनसे कि महात्मा गांधी के दौर में क्या हुआ, या आपने उनकी प्रार्थना सभा में गाया या नहीं गाया, या अगर गांधी जी की हत्या हुई तो वो उस दिन क्या माहौल था और आप किस मनोदशा में थी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें मैंने उनसे दूसरे अर्थों में की, होली के बारे में पूछा, दिवाली के बारे में पूछा, रक्षाबंधन, भाई दूज, मतलब मुझे मैं एक ठेठ उत्तर प्रदेश का व्यक्ति हूँ जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, जो अपनी मिट्टी में बसा हुआ है और जो तमाम सारी परंपराओं, त्योहारों, लोक मान्यताओं को साथ लेके बढ़ता है। आप समझते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश में एक बच्चा जन्म लेता है तो सोहर भी गाया जाता है, ब्याह होता है, बन्ना होता है, शादी के गीत होते हैं, लेकिन जब आप थोड़े विकसित और युवा होते हैं तो आपको समझ में आता है कि इनमें से अधिकांश गीत तो फिल्मी धुनों की तर्जों पर बने हुए हैं। तरह की बात का जो अपना एक महत्व है वो इस पुस्तक में आया है, और उस बहाने हमने इस बात को, इस चर्चा को इस लंबे अवकाश में संपादित किया है, जो अब मेरा ना होकर के तमाम करोड़ों लता जी के प्रेमियों प्रशंसकों का है।
जी यतीन्द्र भाई, एक लंबी तपस्या आपने करी है लता जी के मनोभावों को समझने की, उनके अलग अलग संस्मरणों को जोड़ने की, उनके उनके जो विचार रहे हैं अलग अलग पीरियड्स में उनको दोबारा से पुनर्जीवित करने की, ये वाकई एक बहुत ज़बरदस्त कोशिश है और आप इसमें यकीनन कामयाब रहे हैं। अक्सर मैंने सुना है कि बहुत से जो कलाकार होते हैं और उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने इतने लंबे समय तक लता जी के संपर्क में आप रहे, तो क्या कभी आपने उनमें भी ये मूड स्विंग ऑब्जर्व किया?
आपने बहुत ही सुंदर सवाल किया है सजीव जी। मैं जितने लंबे समय तक उनसे बात करता रहा तो उनके बहुत सारे मनोदशाओं को, उनकी मानसिक बुनावट को भी जानने समझने का प्रयास करता रहा, और मुझे ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि ऐसे कोई भी अवकाश हम ढूंढ नहीं पाए जिनमें ये कहा जा सके कि उनका मनोदशा में या उनके अपनी सोच में कहीं कोई परिवर्तन होता हो। वे हमेशा ही प्यार और उदारता से भरी हुई मिली जब वे इंटरव्यू देती थी। ये अलग बात है कि अक्सर वो व्यस्त हैं या अस्वस्थ हैं या कोई त्यौहार है तो वो बात स्थगित रहती थी, लेकिन लता जी जब भी अपने समकालीनों के बारे में, गीतकारों के बारे में, अपने संगीतकार जीवन के, अपने संगीत जीवन के बारे में कुछ बताने के लिए सामने आई तो हमेशा ही बहुत ही प्रसन्न भाव से उन्होंने इंटरव्यू दिया, बात किया, और जिन लोगों के बारे में वे हमेशा आदर से भरी रहीं जैसे KL सहगल साहब, नूरजहाँ जी, राजकुमारी जी, तो उन सब की संगीत की व्याख्या करते समय मुझे बड़े आश्चर्य होता था कि जिस पार्श्व गायिका के जीवन के बारे में मैं जानना चाहता हूँ उससे ज़्यादा तो मैं दूसरे कलाकारों के बारे में जान रहा हूँ जिनके बारे में लता जी हमें बता रही हैं। और मुझे एक बात ज़रूर कहनी है कि उनसे बात करते हुए या उन पर लिखते हुए मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि उन्होंने अपने को किसी बड़े पेडेस्टल पे खड़े करके दूसरों को छोटी निगाह से देखकर कुछ बताया हो, बल्कि हर आदमी का सम्मान बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने गढ़ा, कहा, और अपनी बात करते समय शायद वो उतनी सहज नहीं रहती थी, लेकिन जब अपने समकालीन पार्श्व गायक गायिकाओं की बात करती थी तो उनको बहुत मज़ा आता था। एक बेहद बाल सुलभ प्रसन्नता के साथ वे आशा जी के गीतों की बात करती थी, गीता जी के गीतों की बात करती थी, तो ये सब जानना बहुत महत्वपूर्ण है उनके संदर्भ में, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो लता जी को हमारे समय का एक बहुत बड़ा कलाकार बनाती है। और बहुत सारे ऐसे प्रसंग मेरी किताब में मिलेंगे जब उनके बड़प्पन के दर्शन होते हैं, उनके अंदर उस स्त्रीय गरिमा के दर्शन होते हैं, उस मानवीय छवि के दर्शन होते हैं जिसे जल्दी जल्दी लोग जान नहीं पाते या शायद जो जानना नहीं चाहते हैं। मैं इस बात के लिए बेहद आभारी हूँ लता जी का और ईश्वर का कि मुझे कुछ ऐसे अवकाश देखने को मिले जहाँ मैं उनको एक पूरे भरे व्यक्तित्व के रूप में समझ पाया और उन बातों की, उन सारे बहुत सारे संस्मरणों प्रसंगों की निशानदेही अपनी किताब में कर सका। इसी के साथ शास्त्रीय गायक गायिकाओं, नर्तकियों के बारे में, लेखकों के बारे में और राजनीति से जुड़े कुछ शख्सियतों के बारे में भी लता जी के विचार जानते हुए ये बात समझ में आई कि एक बड़ा और सार्थक जीवन जीने के लिए एक बहुत बड़े आत्मीय और विशाल परिसर की ज़रूरत होती है, सौभाग्य से जो लता जी के पास मौजूद है।
जी यतेंद्र, मैंने उनके किसी एक इंटरव्यू में ये भी पढ़ा था कि वो अपना रिकॉर्डेड कोई भी सॉन्ग जो था वो सुनती नहीं थी दोबारा, क्योंकि जब भी वो सुनती थी उन्हें उसमें कोई ना कोई कमी अपनी ही गायकी में नज़र आ जाती थी। तो ये एक छोटी सी बात भी काफ़ी है उनकी महानता को दर्शाने के लिए। लेकिन यतेंद्र, कभी क्या कोई ऐसा गीत जिसके बारे में वो बात करते हुए भावुक हो गई, कभी ऐसा भी हुआ?
ये आपने बहुत सुंदर बात कही है, इस तरह की बातें मेरी पुस्तक में भी हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार बार कहा है, हम सभी संगीत प्रेमी लता जी के संगीत के प्रशंसक इस बात को जानते हैं कि उन्होंने अपने गीतों को रिकॉर्ड करने के बाद कभी उन्हें सुनने की जहमत नहीं उठाई, और कभी अगर उनके कानों में भी पड़ा तो उन्होंने बड़े अन्यमनस्क भाव से उन गीतों को सुना। ये एक उस पक्ष की ओर इशारा है कि हमेशा आदमी अपने पे शंका करता है, एक बड़ा कलाकार, और उसे कुछ बेहतर बनाने की, अपनी किसी कृति को कुछ और सुंदर ढंग से गढ़ने की जद्दोजहद में लगा रहता है। तो ये जहाँ उनके परफेक्ट होने के या परफेक्शन तक जाने के मामले का एक पक्ष है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे गीतों से लता जी की शख्सियत बड़ी उदार और बड़ी एक बड़े शिखर पर जाती है जो उनके हिस्से में आए हैं। ऐसे तमाम गीतों की चर्चा मेरी किताब में हुई है जिसमें लता जी बहुत ही प्रसन्न भाव से अपनी गीतों की बात करती हैं। मैंने कुछ 8-10 गीत चुने हैं जिनकी बड़ी व्याख्या मैंने उनसे खुद से करवाई है। मैंने सवाल किया है कि इन गीतों को मैंने आपके लिए चुना है, इन गीतों पर आप बात करिए, जिसमें सीमा का सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी है, चित्रलेखा का संसार से भागे फिरते हो, और उसका सीमा फिल्म का, सीमा के अलावा मैंने जो फिल्म मदर इंडिया का, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, और पतिता का मिट्टी से खेलते हो बार बार किस लिए, साधना का औरत ने जन्म दिया मर्दों को, तो ये सब गीत जो एक सामाजिक विमर्श की भी मांग करते हैं उनके संदर्भ में लता जी बार बार अपनी बात कहती हैं। कुछ पॉपुलर गीतों को लेकर लता जी बहुत उदार रहीं, जैसे रसिक बलमा, आज फिर जीने की तमन्ना है, पिया तो से नैना लागे रे, रुला के गया सपना मेरा, ये सारे गीत तो मतलब ये गीतों का नाम आते ही लता जी उभरती हैं, लता जी का नाम आते हुए ये गीत उभरते हैं। और मुझे लगता है कि किन्हीं गीतों से, कुछ गीतों से लता मंगेशकर विमर्श को पूरी तरह न समझा जा सकता है, न उसके साथ न्याय किया जा सकता है। वो तो हर एक लता जी के प्रशंसक की अपनी एक सूची है जो उसको ले करके आश्वस्त है कि नहीं, यही सबसे परफेक्ट 100 गीत हैं या यही सबसे परफेक्ट 50 गीत हैं, और मुझे लगता है ऐसे गीतों की संख्या भी हजारों में तो होगी ही।
जी एकदम सही कहा आपने, और काफ़ी सारे जो मैंने इनके इंटरव्यूज़ पढ़े हैं उन सब में ये रहा है कि लोगों ने पूछा है कि आपके 10 फेवरेट गीत कौन से हैं। अब बताइए, जिसने 10,000 से भी अधिक गीत गाए हैं वो अपने लिए कैसे 10 गीत चुने कि ये 10 गीत हाँ परफेक्ट होंगे? तो ये एक वाकई बड़ा मुश्किल सा सवाल है, और मुझे लगता है कि आपने भी ये कोशिश करी है, और आपकी जो लिस्ट है वो मैंने देखी और उस लिस्ट में भी मुझे कुछ कमियां ही लगी। क्योंकि देखिए क्या है कि अब लता जी ने सबसे अधिक गीत लक्ष्मीकांत पहलवाल जी के लिए गाए हैं, और उस आपकी जो लिस्ट है उसमें एक भी गीत LP का शामिल नहीं है, तो ये बात मुझे बड़ी खटकी। और दूसरी बात ये कि जब भी उन्होंने अपने सबसे फेवरेट गीत का जिक्र किया है तो हर बारे वो एक अलग ही गीत रहा है, और ये बहुत स्वाभाविक भी है क्योंकि आप एक इतनी बड़ी गायिका से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ गीत को चुन सके। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में?
ये बेहद अच्छी बात है कि आपने इस तरह का कोई प्रश्न उठाया है, ये बातें भी मेरे मन में हमेशा रहती हैं। और अपने गीत को चुनते हुए किसी भी कलाकार की मनोदशा बहुत महत्वपूर्ण है कि किस समय वो किस गीत की धुन में डूबा हुआ है, या कब किसी गीत की शब्दावली उसे प्रेरित करती है, या कभी कोई ऐसे ही कोई गीत उनके अपने जहन में आ गया जो याद दिलाता है कि कैसे भी हमें अपनी बात को याद रखना है, गीत को अपने आगे ले जाना है, उसको किस रूप में विकसित करना है। मेरी पुस्तक में खंड ही है तेरे सुर और मेरे गीत, और इस खंड में मैंने लता जी के उन गीतों को चुनने का प्रयास भर किया है जो मुझे उनके गीत बहुत ही सुंदर लगते हैं, परफेक्टो करीब हर दूसरा गीत है। और इस क्रम में वो पूरी 60 पृष्ठों की सूची है जिसकी शुरुआत अनिल विश्वास साहब से होती है, और अनिल विश्वास साहब से शुरू करके वो नौशाद, सी रामचंद्र, सलील चौधरी, शंकर जयकिशन, SD बर्मन, हेमंत कुमार, मदन मोहन, रोशन, चित्रगुप्त, रवि, खयाम साहब, जयदेव, कल्याण जी आनंद जी, RD बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, वसंत देसाई, SN त्रिपाठी, सुधीर फड़के, हृदयनाथ मंगेशकर, उषा खन्ना, राजेश रोशन, बप्पी लाहिड़ी और रहमान जी तक आती है। और उसके बाद फिर एक एक गीत चुने हैं जो बहुत सारे भूले बिसरे संगीतकारों के हैं, जिसमें आप इम्पोर्टेंट लोगों में मासे गुलाम हैदर से ले करके और हुसनलाल भगतराम के अलावा आप जमाल सेन के, दत्ता, स्नेहल भाटकर, कानू घोष, शार्दुल क्वात्रा, रामलाल, अविनाश व्यास, शिवराम, इकबाल कुरैशी, इस तरह के सारे संगीतकारों पर है। बाद में फिर मैंने डुएट चुने हैं उसी सूची में लता जी के मुकेश जी के साथ, तलत महमूद के साथ, रफ़ी साहब के साथ, किशोर कुमार, हेमंत कुमार, मन्ना डे और फिर महेंद्र कपूर, सुरेश वाडकर, महिलाओं में शमशाद बेगम के साथ, गीता दत्त के साथ, आशा जी के साथ, उषा जी के साथ, और फिर प्रेमलता, सुरैया, जोहरा बाई अम्बाला वाली, अमीर बाई कर्नाटकी, मीना कपूर, सुमन कल्याणपुर, निर्मला देवी, मुबारक बेगम, राजकुमारी, तमाम सारे लोगों के साथ मैंने वो सारे गीतों की लिस्ट बनाई। तो इसी बात को परफेक्ट करने के संदर्भ में बनाई है कि हम कोई भी चीज़ उनके संगीतिक विमर्श के तहत देख सकें, छूटे ना। हालांकि मैंने इस बात की अपनी असमर्थता भी अपनी भूमिका में प्रकट कर दी है कि कैसे लता जी या किसी भी महान गायक कलाकार के बारे में लिखते समझते समय कुछ ना कुछ छूट जाता है। मैंने कहा भी है कि लता जी ने अपने सुरों की थाती से फिल्मी गीतों, भजनों, गजलों, अभंग पदों, नात, कव्वाली, श्लोक, मंत्र गायन, लोकगीत, कविताओं और देशभक्ति के गीतों के माध्यम से जितनी रोशनी बिखेरी है उसके अनुपात में कोई भी कवि, संगीत विश्लेषक, सिनेमा अध्येता अपनी बात कभी भी मुकम्मल तौर पर कह नहीं सकता। उसका लिखा, सोचा, विचारा कुछ ना कुछ छूट अवश्य जाएगा। तो ये एक बात है जो इसको आप विनम्रता में ना लें बल्कि ये सीमा के संदर्भ में ही लें कि किसी की भी ये सीमा हो सकती है कि जब आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं या एनालाइज करते हैं या अपनी एक रिसर्च बनाते हैं तो उसमें तमाम सारी चीज़ें विषयानुकूल आती हैं और विषय के परवर्ती होने से वो छूट जाती हैं। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि अगर आपने कुछ सौ गाने चुने हैं तो शेष कुछ हज़ार गाने खराब हो जाते हैं या कुछ शेष हज़ार गाने उतने अच्छे नहीं रहते। हो सकता है उनमें कुछ ऐसे दुर्लभ मोती छुपे हों जो आपको ही याद आएँ और किन्हीं दूसरी परिस्थितियों में, दूसरे समयों में याद आएँ जब आपको लगे कि अरे ये गीत कैसे छूट गया। और ये हमेशा से ही होता है और मुझे लगता है महान कला के साथ या महान कला के अनुसरण में इस तरह की दिक्कतें तो आती ही हैं।
जी बेशक यतीन्द्र भाई। अच्छा, आपने अपने जीवन के 6 या 7 साल आपने इस पुस्तक पर लगाए तो आपके पास क्या पब्लिशर पहले से मौजूद थे इस प्रोजेक्ट के लिए या फिर आपने शुरुआत कर दी उसके बाद आपने सोचा होगा कि बाद में देखा जाएगा पब्लिशर कौन होगा, इस तरह से रहा? वैसे मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये यतीन्द्र की ये पुस्तक जिसका नाम है लता सुर गाथा वाणी प्रकाशन ने मार्केट में उतारी है। तो हाँ यतीन्द्र जी, अब आप जो मेरा सवाल है उसका जवाब दीजिए।
प्रकाशक तय करके किसी योजना के तहत किसी बिल्कुल एक फॉर्मूलाबद्ध तरीके से मैंने कभी कोई काम नहीं किया है सजीव भाई, और ये काम भी नहीं किया। ये काम सिर्फ उसी श्रृंखला की कड़ी थी जिस श्रृंखला में मैंने आदरणीय गिरजा देवी जी, नृत्यांगना सोनल मान सिंह जी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब पे काम किया था। मेरी शुरू से एक ख्वाहिश थी कि मैं भारतीय संगीत के कुछ मूर्धन्यों को लेकर के उनके संगीत पर बात करूँगा, और ये मैं इस बात के लिए मतलब एक खुशी महसूस करता हूँ, एक गौरव महसूस करता हूँ कि मैंने एक शास्त्रीय गायिका, एक शास्त्रीय नृत्यांगना और एक शास्त्रीय वादक पर काम किया हुआ है और उसे पाठकों का बहुत प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है। इसी क्रम में भारतीय फिल्म संगीत की शिखर गायिका, सबसे महान गायिका आदरणीय लता मंगेशकर जी पर एक पुस्तक कर सका हूँ तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की तरह है। किताब पूरी हो जाने के बाद जब मैंने ये सारा काम कर लिया, लिख लिया, बातें कर ली, तो उसके बाद ही पुस्तक के प्रकाशक की भूमिका आती है या उसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इससे पहले कि ये प्रकाशक होंगे या इसका कलेवर ऐसा होगा या इसकी डिज़ाइन ऐसी होगी, ये कुछ भी नहीं होता। और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी पुस्तक तैयार करता है या अपनी किसी भी विचार को आरोपित करते हुए कुछ लिखता, पढ़ता, गुनता है तो उसमें ये शुरुआती दौर पर ये सारी चीज़ें महत्व नहीं रखती और वो विचार के तहत भी नहीं आती।
जी यतीन्द्र भाई, ये बात तो आपके इस प्रयास को और भी ऊंचाई दे देता है, और जिस तरह से आपने ये काम किया है ये सभी संगीत प्रेमी श्रोता जो मुझे सुन रहे हैं मैं उन सबसे जरूर आग्रह करूंगा कि यतीन्द्र की ये जो पुस्तक है जिसका नाम है लता सुर गाथा, वाणी प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है, 600 पृष्ठों की ये किताब है और 4 खंडों में ये डिवाइडेड है, और जिसमें सबसे जो लंबा चैप्टर है, जो सबसे बड़ा चैप्टर है, जो करीब 300 पृष्ठों का है, और वो पूरा यतेंद्र और लता जी की बातचीत का सिलसिला है, और वो वाकई पढ़ने लायक है। इस महान गायिका के बारे में जानने की इससे बेहतर कोशिश शायद इससे पहले ना तो हुई है ना शायद अब हो पाएगी। तो यतेंद्र, इस प्रयास के लिए मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और हमसे इतनी सारी बातें की, और ये जो सफ़र आपका रहा, ये उस सफ़र की दास्तान जो आपने हमसे शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम पूरे इंटरव्यू के दौरान लता जी का जिक्र करते रहे हैं, तो इसका समापन भी जाहिर है उनकी गाए हुए किसी गीत से करना ज़रूरी है। मैं फिर से वो गलती नहीं दोहराऊंगा आपसे ये पूछने की कि लता जी का सबसे फेवरेट गीत आपका कौन सा है, लेकिन जो भी आपके जहन में आता हो, जो कहीं ना कहीं आपके इस पुस्तक में भी उसका एक कोई स्पेशल मेंशन हो, तो वो गीत आप मुझे बताइए, और वो क्या मेंशन है ये भी हम लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर लीजिए, ताकि फिर वो गीत हम सुनते हुए कार्यक्रम को अपने समापन की तरफ ले जाएं।
सजीव जी, बेहद धन्यवाद कि एक मुलाकात जरूरी है में मुझे आपने मेरी बात करने के लिए बुलाया, और लता सुरगाथा के बहाने इस पूरे विमर्श को जारी रखा। मैं आपके श्रोताओं का बेहद आभारी हूँ। इस पुस्तक पे पहला खंड जो आज फिर जीने की तमन्ना है नाम से दिया गया है, उसमें मैंने उनके कुछ ऐसे गीतों की चर्चा की है जो मुझे विशेष रूप से पसंद रहे हैं, और जिनकी अपनी एक जो एक परिणति है और जो उनकी एक व्याख्या है वो कुछ दूसरे ढंग से अपने विस्तार की मांग करती है। उसमें बहुत सारे प्रचलित गीतों की भी चर्चा है और बहुत सारे कुछ कम सुने गए गीतों की। मैं खयाम साहब के कंपोज किए हुए शंकर हुसैन फिल्म के गीत अपने आप रातों में चिलमने सरकती हैं की चर्चा करना चाहूँगा, जिसे आप अपने श्रोताओं को सुनाएं। और इस गीत के बहाने भारत में पिछली शताब्दी में विकसित हुई पीढ़ियों को वो सलाम है जो लता जी की आवाज़ के मार्फत हमें मिलती रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उसी हवा में सांस लेते हैं जिसमें लता जी की भी सांसें मिली हुई हैं, और उन्हें प्रणाम करते हुए मैं आपके सभी श्रोताओं को भी नमस्कार करता हूं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद यतेंद्र भाई। दोस्तों, आज ना तो हमने कोई सॉन्ग ब्रेक लिया, ना ही हमने चर्चा के विषय को कहीं और मोड़ा, सिर्फ लता जी के बारे में बात होती रही, और यतेंद्र जी की लिखी इस पुस्तक लता सुरगाथा के ऊपर विमर्श चलता रहा, और देखिए समय कैसे निकल गया बिल्कुल पता भी नहीं चला। दोस्तों, अपनी बात कहूँ तो मैं लता जी के गीतों को सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ, और आज अगर मैं कहूँ कि उनके गीतों को अगर अपने जीवन से निकाल दूँ तो मेरे जीवन में शायद कुछ बचेगा ही नहीं। तो इतने गहरे अंदाज में हम लोग अपने इस आदरणीय गायिका से जुड़े हुए हैं कि इनके बारे में बात करते हुए भी हम भावुक हो जाते हैं। तो दोस्तों, लता जी को दीर्घायु मिले, स्वस्थ रहें, और हमेशा उनका आशीर्वाद इस भारत भूमि पर बना रहे, मैं यही कामना करूंगा। और यतेंद्र भाई के लिए भी मैं ये शुभकामना करूंगा कि उनकी कलम को ईश्वर और भी ऊंचाई दे, और उनके मार्फत हमें और भी बहुत सारे कलाकारों के बारे में जानने समझने का मौका मिले। तो दोस्तों, लता जी के गाए इस अद्भुत गीत के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। एक मुलाकात ज़रूरी है कि अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
Thank you. Back to you.